गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को प्रणाम। परम भागवतीय पुण्य श्लोक परमात्मा स्वरूप श्री 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 स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज, स्वामी अखंडानंद जी महाराज और आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। तीन श्लोक पढ़ेंगे, 23, 24, 25। ये पन्न देवता भक्ता, ये पन्न देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः, तेऽपि मामेव कौन्तेय, यजन्ते विधिपूर्वकम्, अहं हि सर्वयज्ञानाम् भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चवन्ति ते, यान्ति देवव्रता देवान् पितृण्यान्ति पितृव्रतः, भूतानि यान्ति भूतेज्याः, यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। हरिः ओम्। ये अपि कहते हैं कि कौन्तेय हे अर्जुन, अपि यद्यपि श्रद्धया श्रद्धा से अन्विताः युक्त हुए ये जो भक्ताः सकामी भक्त हैं, अन्य देवताः दूसरे देवताओं को यजन्ते पूजते हैं, ते वे अपि भी माम मेरे को एव ही यजन्ति पूजते हैं। अविधि पूर्वकम्, किंतु उनका वह पूजना नारायण अविधि पूर्वक का है, अज्ञान पूर्वक का है। अहम ही सर्वयज्ञानाम् भोक्ता च प्रभुः एव च, न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेन अतः चवन्ति ते ही, मैंने क्योंकि सर्वयज्ञानाम् संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और प्रभुः स्वामी अहम मैं ही हूं, तू परंतु वे माम मुझ अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्वेन तत्व से न नहीं अभिजानन्ति जानते हैं, अतः इसी से चवन्ति गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रताः देवान् पितृन् यान्ति, पितृन् यान्ति पितृव्रताः, भूतानि यान्ति भूतेज्याः, यान्ति मध्याजिनः अपि माम, देवव्रताः देवताओं को पूजने वाले, देवान् देवताओं को यान्ति प्राप्त होते हैं, पितृव्रताः पितरों को पूजने वाले, पितृन् पितरों को यान्ति प्राप्त होते हैं, भूतेज्या भूतों को पूजने वाले, भूतानि भूतों को यान्ति प्राप्त होते हैं, मध्याजिनः मध्याजिनः मेरे भक्त माम मेरे को अपि ही यान्ति प्राप्त होते हैं, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। ये बड़ी सुंदर बात है, भगवान ने कहा कि किसको भी पूजा करो तो आप जिस गांव के रास्ते को जाएंगे तो वहीं जाएंगे आप, स्वामी विवेकानंद रोड पर चले जाओ बांद्रा से, तो फिर आगे वही सब आएगा जो रास्ते में आता है। हाँ, वो तो सांता क्रूज आएगा, फिर पार्ला आ जाएगा, बोरीवली कांदीवली, आगे चल जाओ तो विरार तक रास्ता वो है। और वीटी से उधर से चले गए तो फिर वो थाना कंपनियां थी, कौन सा रास्ता है आपको पता होना चाहिए। वो क्या कहते हैं, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वो भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु उनका यह पूजना अविधि पूर्वक है, अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वे मुझ अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। कारण यह है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। ये बड़ी गंभीर बात है। मनुष्य की खोज जो है, वो कुछ भी हो, मांग कुछ भी हो, किसी भी दिशा में दौड़ता हो, कुछ भी प्राप्त करना चाहता हो, अंततः मनुष्य परमात्मा को ही प्राप्त करना चाहता है। अब उसकी सब चाह के भीतर तो एक चाह परमात्मा की बनी हुई है, सब वासनाओं में उस प्रभु की तरफ पूजने की आकांक्षा का एक बीज छिपा हुआ है। जरूरी नहीं कि उसे ज्ञात हो, उसे ज्ञान न भी हो, तो भी यह जो भीतर की जो आकांक्षा है, इच्छा है, ये बीज परमात्मा की खोज का ही है। कोई भी प्रवृत्ति करे, वो जाना चाहता है उधर ही। मान लीजिए कि हम एक बीज बोते हैं, तो ये बीज जो है, क्या उसको पता है उसमें से क्या होने वाला है, कि मैं टूटूंगा, मैं फूटूंगा। साधना है बीज की भी, गर्मी भी लगती है उसको, सर्दी भी लगती है उसको, अपना अस्तित्व छोड़ना पड़ता है। वो बीज कहे कि मैं अपना अस्तित्व छोड़ूंगा नहीं, तो फिर उसमें से बीज में से अंकुरित होगा नहीं। आप दो चार बीज को एक सुवर्ण की डब्बी में बंद करके ठाकुर जी के सामने पूजा में रख लो 10 साल, वहीं रहेंगे ना, कदाचित वो पनपने की शक्ति भी खो देंगे। किंतु इसी बीज को थोड़ा एक दिन दो दिन धूप में डाल लो, थोड़ा मिट्टी में खाद कोर करके, जल डाल करके नीचे दबा दो, दो चार दिन में अंकुरित हो जाएगा। किंतु अंकुरित होने के लिए उसको गर्मी सहन करनी पड़ती है, उसको सर्दी सहन करनी पड़ती है, अपना अस्तित्व तोड़ना छोड़ना पड़ता है, तो वो फूट जाता है, तो उसमें से अंकुर होता है। ये तमाम विधि विधान होते हुए बीज को कुछ ज्ञात नहीं है क्या हो रहा है, मुझ में से कैसा अंकुर फूटेगा, वो कैसे वृक्ष बनेगा, उसकी डालियां कैसी होंगी, पत्तियां कैसी होंगी, रूप रंग कैसा होगा, कितना बड़ा पेड़ हो जाएगा, और उसमें कुछ फल भी लगेंगे, फूल भी लगेंगे, इसकी कोई भी कल्पना बीज को नहीं होने पर भी वो जब साधना के मार्ग पर चला गया तो उसमें से वृक्ष हो ही जाएगा। ये जितने सारे बीज हैं उसमें से सबसे छोटा बीज जो है उसका पेड़ सबसे बड़ा है, उसका नाम है पीपल। बड़का जो बीज है उससे भी छोटा बीज पीपल का है, जो पक्षियों को बहुत पसंद है, पक्षी उसके छोटे छोटे फल खा लेते हैं। वो मुझे पता नहीं कि आपने कभी गाय का भैंस का पुराना गोबर देखा हो, तो वो जब उसको बाजरी ज्वार खिलाते हैं पानी में डाल करके, तो गोबर में भी बाजरी ज्वार साबुत निकलती है, हो। ऐसे ही ये बीज के साथ में जो फल खाता है पक्षी, वो बीज भी साबुत, उसको भी पचता नहीं है। सभी पचेगा ऐसा जरूर नहीं। आकाश में अपनी उड़ान के समय में वो अपनी बीट भी गिरा देता है। कहां गिरती है? कहीं भी, मकान के ऊपर, छत के ऊपर, मंदिर के ऊपर, मस्जिद के ऊपर, हमारी अपनी दीवार के ऊपर। और उसमें से 10-20 दिन में एक उधर से पीपल निकल आता है, और वो ऐसा पीपल निकलेगा आपको ध्यान नहीं है, वहां पहुंच भी सकते नहीं। धीरे 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 करके 1-2 साल में वो पीपल आपकी दीवार को तोड़ के रख देगा। एक बीज की यात्रा है जो दीवार को तोड़ने में सक्षम है। फिर वो मंदिर की दीवार है कि मस्जिद की दीवार है कि आपकी दीवार है, किसकी दीवार है, कोई उसको थोड़ा सूर्य प्रकाश, थोड़ी हवा, हवा में रहा हुआ जल ही वो ले लेता है। मानव के जीवन में जो साधन है, वो जो हम साधन करते हैं किसी भी दिशा में करें, वो तमाम साधन का जो लक्ष्य है वो तो केवल ईश्वर की प्राप्ति ही है। अब ईश्वर के किस स्वरूप को आप बजते हो, जैसे कि हम कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये तो एजुकेशन मतलब का है, तो एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाएंगे, मिलेंगे, सेक्रेटरी को मिलेंगे, एजुकेशन सचिव को मिलेंगे, तब जाकर के 10-20 दिन चक्कर लगा करके वो एजुकेशन मिनिस्टर आपके पास आ जाएंगे। और अगर आपने युग कल्याण के यूथ एक्टिविटी के मिनिस्टर को बुलाया तो वो आएगा, चीफ मिनिस्टर को बुलाए तो चीफ मिनिस्टर आएगा, गवर्नर को बुलाए तो गवर्नर आएगा। मगर कोई भी मिनिस्टर कहां जाते हैं इसकी इत्तला चीफ मिनिस्टर को पूरी रहती है। उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी मिनिस्टर कोई भी संकल्प व्यक्तिगत रूप से नहीं करते। कोई भी प्रोजेक्ट पास करना है, दिस ऑल नॉट टू हिम, ये बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है। कृष्ण कहते हैं कि तुम किसी भी देवता का यजन भजन करो तो फाइनली तुम मुझको ही करते हो, मेरी ही मिनिस्ट्री है, मेरे ही हाथ है, मेरे ही पांव है, मेरे ही आंखें, मेरे ही कान है। ठीक उसी तरह ये इंसान भी बीज की तरह परमात्मा की तरफ बढ़ता है अनजाने में, पता नहीं उसको क्या खोज रहा है, अंतर्निहित खोज क्या है। मान लीजिए कि एक आदमी है, वो धन की खोज में रहता है, येन केन प्रकारेण, वो धन को ही सोचता रहता है, धन के पीछे दौड़ता है। अगर कहें कि वह भी परमात्मा को ही जैसे खोजता है तो वह मानने को राजी नहीं होगा। अगर मैं धन को खोज रहा हूं और तुम कह रहे हो परमात्मा को खोज रहे हो, क्योंकि जो इंसान धन को खोजता है वो परमात्मा को नहीं पूछेगा, उसको पूछो क्या खोज रहे हो। कोई इंसान पद को खोजता है, प्रतिष्ठा को खोजता है, यश को खोजता है, वह भी प्रभु को खोजता है, वह भी नहीं कहेगा। आदमी प्रेम को खोज रहा है, हम कहेंगे तुम परमात्मा को खोज रहे हो। कोई तालमेल नहीं लगता है, कोई धन की खोज की बात करे, कोई पद की बात करे, कोई प्रेम की बात करे, वो रास्ते टेढ़े मेढ़े होने पर भी वो अंततोगत्वा वहीं जाएंगे। अभी एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि आदमी जो धन को खोजता है किस लिए, उसका प्रयोजन क्या है? बहुत प्रयोजन है। कारण क्या कहेंगे कि भाई जब धन मेरे पास में रहे तो मैं थोड़ा सिक्योर हो जाऊंगा, हाँ, योग क्षेम वहामि, मेरे पास में लाइफ इंश्योरेंस के एजेंसी, क्या बोले, मैंने पॉलिसी लेके रखी है 10-20 लाख की, जो कुछ भी हो 10 साल 15 साल 20 साल, तो मुझे वो धन मिलेगा। जब मैं जरूरत में हूं, मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे उनकी पढ़ाई के लिए, मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो उसकी शादी के लिए, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरी परवरिश के लिए, कल की सुरक्षा के लिए अगर धन पास में है तो मेरी कल सुरक्षित है, और अगर धन पास में है तो मुझे कल की फिक्र नहीं है। तो अर्थ क्या हुआ है कि धन खोज रहा है, एक ऐसा जीवन मिल जाए जहां चिंता ना हो, एक ऐसा जीवन मिल जाए जहां सुरक्षा हो, असुरक्षा ना हो, जहां भय ना हो, असहाय अनुभव ना करो, ऐसा जीवन खोज लो। धन खोज रहा है बड़ी मुश्किल बात है, जो धन खोज रहा है वो उससे सुरक्षित रहेगा क्या, एक प्रश्न है। अपने आप को थोड़ा टटोलना, क्या सारे धनवान सुरक्षित है? कितना गड़बड़ किया है, अंत में तो पकड़े जाएंगे, छूट जाएंगे बोल करके भी, दो चार दफे छूट सकते हैं, मगर एक बार ऐसे पकड़े जाएंगे, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, फंसोगे फिर कभी नहीं आओगे। कितने देर तक आप ये चलाते रहेंगे अपना डिंग? अर्थ तो ये हुआ कि धन मिल जाए जब चिंता न हो, असुआ न करूं, धन खोज रहे हो। दूसरी बात है कि ये धन जो मेरे पास में हो जाएगा तो उसका मालिक हो जाऊंगा, तिजोरियां भर लूंगा। अपने आप को सोचो और टटोलो। कुछ हफ्ता भर पहले ये दीनाबिन मिलने के लिए आई, ऐसे ऐसी बिजली कौन थी ऐसे चमकी, आकर के फिर बोले समझी मैं जा रही हूं। हमने कहा ठीक है कोई सेवा नहीं, नहीं आज बजट है। मैं जोर से हंस पड़ा, क्यों हंसते हैं महाराज जी? मैंने बोला बजट से मेरा क्या ताल्लुक है, मुझको कोई टैक्स देना ही नहीं, मैं कितना भी कमाता चला जाऊंगा उसको कोई टैक्स नहीं। हाँ। राम रतन धन पायो, हाँ, चोर न लूटे और राजा भी नहीं लूट सकता है, दिन दिन बढ़त सवायो। तुम ऐसे धन के पीछे लगे हो जिसका कोई अपना पांव नहीं है, चंचला लक्ष्मी कहते हैं। बड़ा मुश्किल काम है सोचना कि इंतजाम कुछ भी कर लो, आदमी कोई भी उपाय कर ले, लेकिन इंसान की जो आकांक्षा है वो ऐसे धन को चाहते हैं जो सदा सदा शाश्वत हो, परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी संपत्ति शाश्वत नहीं है। घर मोटू पण हरिने माटे एक खूणा मां स्थान नथी, पूजा छे अहिया लक्ष्मीनी नारायण नु नाम नथी। देखिए आपने नारायण को पकड़ना, भगवान नारायण है वो, जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई हाथ में माला लेकर के वो कहती है नवांगे त्यांची रमा हो यदासी, जो मेरे से विवाह नहीं करना चाहता है मैं उसकी दासी बनकर रहूंगी। वो नारद भी बोल रहे मेरे से शादी करो, तमाम लोग चाहते थे किंतु एक व्यक्ति को परवाह भी नहीं है। क्या है? शांताकारम भुजग शयनम पद्म नाभं सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम। क्या बात है, शांताकारम भुजग शयनम। लक्ष्मी जी कहती है इस इंसान से और कौन हो सकता है, ये कौन देवता है, ये कौन प्रभु है जो सारा विश्व मुझसे विवाह करने के लिए आगे आ रहा है और उसको चिंता ही नहीं है कोई लक्ष्मी का अस्तित्व है कि नहीं, मैं इसी की शादी। तो हमारे जो नामदेव है वो क्या कहते हैं, आज भी बैठ करके लक्ष्मी जी नारायण के पांव दबाती है। नारायण को पकड़ना, लक्ष्मी जी शाश्वत रहेगी, केवल लक्ष्मी को पकड़े भरोसा नहीं कब चली जाए। इसलिए क्या कहा कि आदमी धन तो खोजता है, भीतर ही भीतर कितना धन बढ़ता जाएगा अपने भीतर वो खाली होता जाता है, ये भी एक बात है। धन जितना बढ़ता है भीतर के भीतर वो खाली होता जाता है, वैक्यूम फील करता है, समथिंग इज मिसिंग, कुछ मुझ में खाली है। ये दुनिया में इतने बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं, ओबामा जी जिस दिन अपने अमेरिकन प्रेसिडेंटशिप को प्राप्त कर लिए उसके तीसरे दिन वो एक यूनिवर्सिटी में आए थे इलिनोइस में, इत्तेफाक से हम भी रहे वहां पर। तो उन्होंने क्या कहा, पहला ही भाषण किया कि बच्चे तुम लोग अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी बात है। अगर अमेरिकन प्रजा नहीं पढ़ेगी तो आगामी 25 साल में या तो भारत नहीं तो चीन अमेरिका पर हावी हो जाएगा। चीन के बच्चे पढ़ते हैं और हिंदुस्तान के बच्चे तो बहुत पढ़ते हैं, जबकि अमेरिकन बच्चे पढ़ते नहीं। 100 में से 80-85-90% बच्चे अमेरिका के 12वीं क्लास के बाद में आउट। वो 10वीं क्लास तक तो घर में पढ़ते हैं, 11वीं-12वीं यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, 12वीं क्लास पढ़ते पढ़ते वो माता पिता से अलग हो गए, बस फिर मॉम डैड, वो कब होता है मॉम डैड, मॉम इज मम्मी एंड डैड इज डैड, खत्म, छुट्टी हो गया। मम्मी भी बोलते हैं मुर्दे को और डैड को बोलते हैं मरे हुए को, क्या करेंगे। वो क्या उनका संबंध है, हर शनिवार को मेरा कपड़ा का पोटली लेके जाओ, नया कपड़ा मुझे दे के आओ, और हर शनिवार को मेरे खाने पीने के डब्बे खाली हो गए बरकित है। तो मां जाती रहती है, मां को अटैचमेंट बाप को नहीं है, तो हर शनिवार को मां जाकर के उसके कपड़े ले आती है, लॉन्ड्री करके आती है, डब्बे खाने का भर के जाती है, और 2 साल के बाद में मॉम बोले मां बाय। वो कब आएंगे हम आपको मिलने के लिए, वो एक मदर्स डे, फादर्स डे, एंड तीसरा है थैंक्स गिविंग डे। साल में 3 दिन को छोड़कर के 4th दिन ये बच्चे हैं, कभी नहीं दिखते हैं। और आई लव यू डैड एक दिन ईमेल भेजता है, बाबा का जन्मदिन अगर याद रहेगा तो। हिंदुस्तान के बच्चे बहुत पढ़ते हैं, अमेरिका को आग लगी हुई है कि हमारा अमेरिका बिक नहीं जाए। वो अपनी कुर्सी पर बैठ करके पहले दिन सोच रहा है कि ये भविष्य अमेरिका का जो है अंधकार में है। ग्रैंड मोटर में, ट्रॉय मिशिगन में काम करने वाले लोग इतने भय में जीवन यापन करते हैं कि हम सुबह गए शाम को हमारी नौकरी सलामत है कि नहीं, कि हमको घर भेज दिए जाएंगे। ग्रैंड मोटर में वॉशिंगटन डीसी जितना एक सुप्रसिद्ध बड़ा ही देदीप्यमान शहर है, उसमें 1.5-2 फीट की दीवारें हैं, वो भूत लगेगी ऐसी हो गई, आधा वॉशिंगटन डीसी भूत लग रहा है। और मैनचेस्टर में चले जाओ वहां तो भूत ही भूत है, वहां पर 1.5-2 फीट की दीवारें हैं किंतु उसमें भी पेड़ खड़े हो गए। क्यों? सारी मिलें बंद हो गई है, एक भी मिल नहीं है। हिंदू मिल का परिसर मिलों तक फैला हुआ है। जब पैसा धन बढ़ता जाता है भीतर ही वह रिक्तता खालीपन का अनुभव करता जाता है। पूरी जिंदगी भर हम दौड़ लगा रहते कि धन की राशि लग जाए किंतु खालीपन नहीं भरता है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव के जो कथा है उनमें उन्होंने कहा कि एक राजा के पास एक नाई आता था। नाई अपनी दाढ़ी नहीं बनाता है, चोर के जैसा चेहरा हो गया, ऐसा गाल पिचक गए, आंखें आ गई। तो राजा ने कहा तेरे को क्या हो रहा है, तू खाना नहीं खा रहा है क्या? नहीं, मैं भोजन तो कर रहा हूं, सब ठीक ही हूं। जब भोजन भी कर रहा है ठीक भी है तो मुझे ये तो बात बता कि तेरी आंखें। बोले महाराज जी, जब आप पैसे देते हो मुझे पूरा नहीं होता है। कितने मिलते हैं? कि 2 मेरे को दिनार मिलती है शाम, हफ्ते भर में 2 दिनार में क्या होता है। अच्छा 4 कर ले। राजा ने 8 कर दी, 16 कर ली, 32 कर ली, जब 64 कर ली तब भी चेहरे में कोई फर्क नहीं हुआ। तो राजा ने बोला इधर आ, तो एक दिन जंगल घूमने गया था क्या? हाँ। वह नदी किनारे एक पेड़ के नीचे कोई देवता ने तुझे एक घड़ा दिया था क्या? हाँ दिया। उसकी आंखों में चमक आ गई, वो घड़ा सोने का था। हाँ। किंतु सोना मोहर उसमें आधी भरी थी। हाँ। तो उसको भरने की कोशिश कर रहा है महाराज जी। हाँ हाँ, नहीं भरेगा, वो लोभ का घड़ा है, कभी नहीं भर सकता है। मैं 64 क्या, तू 640 दे दू ना, तब भी नहीं भरेगा, क्योंकि वो लोभ का घड़ा है। जिस इंसान को अपने घर में कोई, मान लीजिए कि 42 लाख रुपए का पैकेज मिलता हो साल में, 42 लाख, तो वो सोचता है कि मुझे 50 लाख का पैकेज कैसे मिले। 50 लाख का पैकेज मिलना तो कोई बुरी बात नहीं, तो 60 लाख का कैसे मिले। किंतु उसको ढंग से पूछो, ये साधु लोग होते हैं ना, उनका जीवन कचरा पेटी के माफिक होता है। लोग बाग आकर के अपने जीवन की तमाम समस्याएं उनके दिमाग में डालते चले जाते हैं। जिसको 42 लाख रुपया मिल रहा है उसको पूछो, ठीक तो हो बच्चे? हमारी सामने सामने जिनको 5,500 रुपया तनख्वाह हर महीना मिलती थी और अभी 2.5 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं, ऐसे लोगों को वो जब आते हैं तो कभी भी आए तो तीन बार फोन करते हैं, सभी जी मैं थोड़ा प्राइवेट में मिलना चाहता हूं। मुझको क्या पता है, प्राइवेट में आकर के रोएगा वो, गिड़गिड़ाएगा, समझी दीप्ति ठीक नहीं चल रही है, समझी गुड्डू है ना भरोसा वाला नहीं है, एक गुड़िया का तो व्यवहार बहुत गंदा हो गया है। स्वामी जी दसवीं क्लास में पढ़ती है, शाम 6 बजे ट्यूशन पूरा होता है, किंतु रात 9-10 बजे तक नहीं आती है। मैं यहां रहता नहीं हूं, मैं रहता हूं पूना में, तो मम्मी जो पूछती है तो कहती है व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, आई गॉट नंबर ऑफ यंग फ्रेंड्स देयर एनआरआई, आई मूव विद देम। अगर मैं मेरे यंग दोस्त जो विदेश से आए हुए उनके साथ रात देर तक घूमती रहती हूं तो गलत क्या करती हूं, पढ़ने में रुचि नहीं। और गुड्डू है वो दिन भर टीवी देखता रहता है, अब दीप्ति क्या करेगी, उसकी मृति गीति यहां जाइए, मैं क्या करूं स्वामी जी, 5,500 रुपया से 2.5 लाख रुपया तो हो गया, किंतु उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया है, हार्ट की हमेशा, उनका बड़ा भाई हार्ट का स्पेशलिस्ट है, वो ढेरों दवाई उसको कितनी 20-22 गोलियां कैप्सूल रोज खिलाता है उसको कि ये ठीक रहे इंसान। हमारी अट्टालिका बड़ी हो गई है, अंदर से हम खोखले हो गए, क्यों होता है, इसलिए हम धन खोजते हैं कि जब अवस्था आ जाए तो कुछ उसे मांगने के लिए ना बचे, किंतु अवस्था आने के पहले ही अवस्था आ गई उसका क्या करो। तुम्हारी उम्र कितनी हुई है अभी, मेरी उम्र अभी 40 साल होने वाली है, 40 साल में तुम्हारी सकल सूरत ऐसी हो गई जिससे को तुम 80 साल के भी नहीं हो, बाल सारे चिट्टे हो गए, बचे थे बाल सारे झड़ गए, कमर तुम्हारी झुक गई, पेट थोड़ा हो गया, ये वस्तु क्या है तुम्हारे जीवन की, किस दिशा में तुम जा रहे हो। जिस आदमी को कहो कि पद चाहते हो, पद चाहने के लिए क्या है, कुछ हो मैं किसी से हीन मालूम ना पड़ो, किसी से नीचा मालूम ना पड़ो, कहीं पर भी जाऊं तो मुझसे कोई आगे ना रहे। भारत की दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है, 3.5 अरब, 3.5 अरब लोग भी यही सोचते हैं कि हम आगे बढ़ जाए, हम सोचे कि हम ही सोच रहे हैं कि हम किसी से हीन ना हो, हम सोचते कि हम ही एक ऐसी स्थिति में हो कि हम किसी से नीचे ना हो, हम सोचते कि हमारे से ऊपर कोई ना हो, किंतु 3.5 अरब लोग यही सोच रहे हैं, तो ये नहीं पता करते कि हम अकेले नहीं है, हम 3.5 अरब लोगों के सामने लड़ाई कर रहे हैं। तुम्हें संघर्ष तो करना होगा, स्ट्रगल 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 इज द साइन क्वा नॉन ऑफ लाइफ एंड स्टेग्नेशन इज अ डेथ, संघर्ष तो जीवन है, स्थगितता मृत्यु है, संघर्ष करो ये अनुचित नहीं है। 9 बजे जाओ प्यार से, जितना कुछ कर सकते हो करो, 6-7-8 बजे वापस आ जाओ, किंतु घर जाते एक समय भी ब्लड प्रेशर लेके आओ, और रात में आते आते ब्लड प्रेशर की 3 गोलियां खाते खाते आओ, ये क्या है। तुम जो पैसा कमाते हो खाने के लिए पीने के लिए घूमने के लिए, पूछो अपने आप को कि अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जितना बैठते हो, अपने डॉक्टर के पास जितना बैठते हो, उतना कंसल्टेंट के पास बैठते हो, क्यों बैठते हो पूछो। मैं अपने परिवार में अपनी पत्नी के साथ सुखी रहूं, मेरे बच्चों के साथ मैं सुखी रहूं, मेरे माता पिता को मैं सुखी करूं, मेरे भाई छोटे उनको अच्छे से पढ़ाऊं, इनके लिए तुम संघर्ष करते हो, किंतु पूछो कि 1 महीने में 1 साल में अपने जितना समय आपके डॉक्टर आपके कंसल्टेंट आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके ट्रेजरर आपके कैशियर के साथ में बिताया, उसका 100 वाला भाग भी आप अपनी पत्नी के साथ बैठ के उसकी आंखों में आंख डाल के बैठा है क्या। अपने बच्चों को गोदी में बैठा करके उसके गले में हाथ डाल करके आपको प्यार करने के लिए मौका मिला क्या। वो बूढ़ी मां जो है जिसके ब्लाउज यहां लटक गए हैं, छाती भी लटक गई है, उसको थोड़ा कोणी मार के मां कैसी है कभी सोचने के लिए चल मां जाते हैं कहां घूमने जाना है, पूछा क्या अपने आपको। फिर ये क्या दौड़ किसके लिए है, तुम दौड़ते हो पैसा कमाते हो तो गलत नहीं है, किंतु उन तमाम के पीछे का जो हेतु है उसको तो आपने बरी कर दिया है, उसको तो मुर्दों के जैसे गाड़ दिया है। कृष्ण कहते हैं ये क्या तुम्हारी अवस्था है, तुम चारों ओर भागते हो। ध्यान दो, कल ही शाम हम सत्संग में कह रहे थे कोई मौका मिले ना हमेशा पिछली लाइन में बैठना, आगे नहीं बैठना, क्यों, कोई उठाएगा नहीं आपको वहां से, आगे बैठ गए तो कोई पूछ सकता है भाई क्या बैठा छो यहां, ट्रस्टी लोग कौन छे, अच्छा ठीक है, पीछे बैठेंगे तो दूसरा लाइन में, ये प्रेस के लिए मीडिया के लिए है, और तीसरा ये वीआईपी लोगों के लिए है। क्या मतलब है? चौथा विशेष इनवाइटीज के लिए है, पांचवा वो डोनर्स के लिए है। तो फिर जाओ पीछे, क्या मतलब है? छह लाइन कूदना इससे अच्छा उधर ही बैठ प्यारे, तुम्हारी औकात है तो तुमको वहां से उठा करके ऐसा ना यहां क्या बैठाओ, आओ आओ स्टेज पर बैठा देंगे तुमको। हमारे जीवन की दौड़े सबसे ऊपर आने की, जीसस ने भी यह करा, जो पंक्ति में सबसे अंतिम खड़ा हो जाएगा वो ही सबसे अधिक प्रथम नंबर को पाएगा। हमारा क्या होगा? हम पंक्ति में अधिक खड़े होने के लिए आतुर हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन हमारी आकांक्षा ठीक होते हुए भी उचित खबर देती है। और खबर यह है कि व्यक्ति अपने परमात्मा के साथ कभी कंपटीशन नहीं करता है, उसी से करो। तुम कितने सुंदर हो नाथ, तुम्हारी सुंदरता का चिंतन करते करते मैं भी सुंदर हो जाऊंगा। तुम कितने करुणा निधान हो नाथ, तुम्हारी करुणा का चिंतन करते करते मैं भी करुणावान बन जाऊंगा। तुम कितने उदार सरित हो मेरे प्रभु, तुम्हारी उदारता के साथ में मैं भी उदार बनूंगा। कभी ये सोचा है कि ईश्वर कैसे सोचता है? ऐसे हम सोचें, अहंकार के लिए नहीं, हमारे उत्कृष्ट अभ्युदय के लिए। एक और देखिए कि इंसान मृत्यु से भी भयभीत है, हमेशा डरा हुआ है। जो नया बच्चा देखा है थोड़ी आवाज होने से वो डर जाता है, अंधेरे में डरता है, वो मां न हो पिता न हो निकट में कोई ना हो तो रोने लगता है। अगर मां साथ में लेटी हुई है बैठी हुई है तो बच्चा मां के पहले जग गया तो खेलता रहता है, हंसता रहता है कि मां साथ में लेटी हुई है। मां शाम सुबह 5:30-6 बजे तक उठ जाती है, बच्चा 3:30-4 बजे ही उठ गया किंतु किल 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 हंसता रहता है, वही मां को जगाता है। किंतु मां ना रहे तो साथ में नहीं देखे मां को तो रोना चालू कर देता है। एक भाई में बच्चा पैदा होता है, भाई को लेकर के हम आए हैं, हमारे जीवन की गतिविधि केवल भय हो गई है। और भय क्या है? मृत्यु है। इसलिए गीता जी के 16वें अध्याय में आरंभ किया, अभयम सत्व संशुद्धि, अभय बनो सबसे पहले। ये मृत्यु तो होने वाली है, अक्सर होता है। मृत्यु से बचने के हम इंतजाम कर लेते हैं, और जितनी इंतजाम बड़ा होगी ना उतना ही मृत्यु ज्यादा भय हो जाएगा। पंजाब जब बड़ी मुश्किल में दुष्कर्ता में था, हमको पंजाब पुलिस एकेडमी लोग बुलाया करते थे, जब बुलाएंगे तो ऋषिकेश भेज देंगे 2 गनमैन को, आप हरिद्वार से ट्रेन में बैठेंगे जलंधर तक आएंगे, लुधियाने तक आएंगे, तो लुधियाना तक 2 गनमैन आपके साथ में आएंगे। मैंने बोला क्यों करते हो झमेला? और लुधियाना रेलवे स्टेशन में उतरे फिल्लौर जब जाना है तो 2 और गनमैन साथ में लग जाएंगे। जम्मू में अगर हमने उतर गए नॉर्दर्न कमांड में जाएंगे तो 10 लोग गनमैन रहते हैं, आगे जीप चलती है पीछे जीप चलती है, वाह वाह। मैंने कहा ये मत किया करो, बिना मतलब के लोगों को पता चलेगा ये वीआईपी है। वैसे हम वीआईपी हैं भी नहीं है, हम साधारण हैं, कौपीन वंतम खलु भाग्य वंतम, आगे पीछे कुछ नहीं है, किस चीज का भय है हमें? नहीं नहीं स्वामी जी, तो प्रोटोकॉले करना पड़ता है, बड़ा मुश्किल काम, दाएं बाएं कहीं अकेले नहीं जा सकते बिना उन बंदूक वालों के लेकर के। वो बंदूक वाले 2 भी चलते थे हमारी दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के साथ में, क्या हुआ? बंदूक वालों ने उनको मार दिया। आप समझते हैं कि जो हमारी सुरक्षा के लिए है वो सुरक्षा ही आपको भक्षण करके गई? वाड़ची बुढ़ंगड़ी जाया उठाए, ऐसे होता है। हम समझते कि हम मृत्यु से संरक्षण करें, जिंदगी असुरक्षित है, जिंदगी असुरक्षा में अनसर्टिनिटी है, कितने उपाय करते हैं किंतु मौत जो आने की आनी है, जीना जब समाप्त हो जाता है तो जीने के अंत इंतजाम में। ये देखिए एक बात है, एक राजा था, उसको रात में एक सपना आ गया, एक काली छांव उसको गले को दबा रही है और वो भय में रहा, उठा पूरा बदन पसीना पसीना हो गया। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया, राजगुरु को बुलाया, सलाहकारों को बुलाया, लोगों ने कहा कि मौत निकट आ रहा है, महाराज भाग निकलो आप यहां से। तो जो उनके यहां पर सबसे बड़ा तेज दौड़ने वाला घोड़ा था उस घोड़े को पकड़ा, चलो भागो। वो पंख जैसे होती है उड़ने वाला हो ऐसा तेजी से दौड़ने वाला घोड़ा शाम तक 600-700 किलोमीटर तक दूर चला गया, किंतु घोड़ा थक गया था, मुंह में झाग आ रहे थे। इत्तफाक से वहां सुंदर सा जंगल एक झरना भी था, उस झरने के पास में राजा उतरा। तू थक गया है, मैं भी थका हूं, जल पी ले। घोड़ा ने मुंह को जल में डाला, वहीं छटपटा करके मर गए। राजा बहुत दुखी, अब क्या होगा, मैं इतनी दूर आ गया हूं, खुद भी तो थका था। तो उसने भी अपना मुंह धोने के लिए, जल पीने के लिए हाथ में जल लिया। जो हाथ में शुद्ध स्फटिक के समान सुंदर जल था, उस जल के भीतर उसने अपना चेहरा तो देखा, पीछे से एक काली मौत भी देखी जो उसने सपने में देखी थी। पीछे देखा तो मौत ऐसे खड़ी हटखड़ाहट हंस रही है, ऐसे जोर से हंस रही है मौत, तुमको तो यही मरना था, घोड़े को भी यही मरना था, ये पहले से तय था, किंतु हम सोच रहे थे कि तुम यहां कैसे पहुंचोगे, किंतु इत्तेफाक से पहुंच गए, चलो अब तुमको मार देते हैं। भावनगर में बहुत भूकंप होते रहे, हर दूसरे तीसरे दिन भूकंप होते थे। हमारे एक पहचान वाले क्रिश्चियन सज्जन रहे, शिपिंग कंपनी के जनरल मैनेजर थे। उनकी पत्नी ने कहा, मेरा मायका जो है वो महुआ में है, चलो वहां भूकंप नहीं हो रहे हैं, नजदीकी महुआ कोई ज्यादा दूर नहीं है, 2-2.5 घंटे की ड्राइव है, तो हमको वहां छोड़ दो, मेरे को यहां बड़ा भय लग रहा है। पति पत्नी और दोनों बच्चे ड्राइव करके महुआ आ गए, पोर्च में गाड़ी खड़ी की, पोर्च में गाड़ी खड़ी करके दरवाजे की कॉल बेल किसने बजाई, पति ने बजाई, ये पत्नी बच्चे बैठे हुए कार में, और कॉल बेल बजाई, जिस समय कॉल बेल बज रहा है उस समय में भूकंप हुआ और पोर्च पूरा गिर गया, गाड़ी के साथ में पत्नी और बच्चे मर गए। क्या आप समझते हो कि मैं मौत से बच करके जाऊंगा? हमारे आश्रम में आने वाला एक बहुत अच्छा सज्जन, बहुत सुंदर चित्रकार था, वो बोलता है कि मेरा साडू और मेरी शादी दोनों एक साथ हुई है। साडू तो हर हफ्ते में आ जाता है कंडला से, यहां पर गांधीधाम से, यहां पर मुझे कहता है कि तू क्यों नहीं आता है, अपने दोस्त की गाड़ी लेकर के 25 जनवरी 2001 को वो कंडला चले गए। रात गए, बड़ी खुशी में रहे, सवेरे नाश्ता करने बैठे हुए थे, उनका सबसे छोटा बच्चा 3 महीने का जो है वो ऐसे ही खिलखिल कर रहा था, तो उसको थोड़ा धूप के बीच में रखा उसको आंगन में, और ये लोग है पोर्च में बैठे रहे, भूकंप हुआ, सारे के सारे मर गए, वो 3 महीने का बच्चा बचा हुआ है। ये रोज हो रहा है हमारी आंखों के सामने, हम देख रहे हैं, बड़ी दुष्कर की बात है। 26 जनवरी को ध्वजवंदन हो रहा था कांकरिया के पास में, फुटबॉल मैदान में एक डॉक्टर साहब है, खड़े खड़े दाढ़ी बना रहे, एक तौलिया पहने हुए खड़े हुए हैं, और वो ध्वजवंदन को देख रहे हैं। भूकंप हुआ तो पूरी की पूरी जो इमारत है, मकान है, पूरा जमीन के अंदर चला गया, पूरा जमीन में चला गया। वो बोल रहे हैं मुझको बचाओ, लोग उसकी आवाज सुन रहे। इत्तेफाक से लोग उस डॉक्टर को जानते, लोगों ने भी देखा था कि वो दाढ़ी बना रहा है और हम लोगों को देख रहा है, लोगों ने देखा कि वो लैंड रोवर लेकर क्या है, ऐसे करके निकाल रहे हैं, यो कट करके निकालो, जल्दी से पत्थर निकालो, निकल गया एक बार ऐसा करके, कौन आधा कटा हुआ डॉक्टर बाहर निकल गए। हम किस बात को सोचते हैं अपने आप को पकड़ने के लिए, हम किस बात के लिए अपनी धौंस करते हैं, हम अपने जीवन को क्या टटोलते हैं। हमारी खोज बनी हुई है अमृत की, किंतु हमें मृत्यु की प्राप्त होती है। उन ठीकरों को हम तोड़ रहे हैं जहां पर कोई ईश्वर नहीं है। हमारा जीवन का अर्थ क्या है, हमारे जीवन की वासनाएं क्या है, हमारी गति तो है, हमारी दौड़ तो है, किंतु कृष्ण कहते हैं तुम्हारी तमाम दौड़े अविधि पूर्वक की है, वो विधि विधान की नहीं है, इसके अंदर में चेतना नहीं है, प्राण नहीं है, उष्मा नहीं है। पूछते तो हो तुम, किंतु किसको पूछते हो यही तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि आपकी जो पूजा है वो पूजा तो है, उसमें फूल भी है, गेरु चंदन भी है, दुर्वा भी है, जल भी है, किंतु सकाम पूजा है, पद के लिए है, धन के लिए है, जीवन के लिए है, सुख के लिए है। और सुनो अपने आप को, कभी कभी मंदिर में जो खड़े हैं उनकी आंखों को देखना, उनके चेहरे को देखना, और कुछ बड़बड़ाते रहते, फिर दाएं भी देख रहे, फिर बाएं भी देख रहे, उनको पूछो आज जो मंदिर में जाके आए, आप लोग जिस दिन भगवान का अन्नकूट होता है उस दिन कभी मंदिर में दर्शन किए क्या, बताओ? भगवान के अन्नकूट के दिन दर्शन करने जाते हो तो क्या दर्शन करते हो, पूछो अपने आप को। अरे ये जो दाल रंग के वो सरस हतो है, हम चटा का दाल हती आम के, वो दाल की दाल का रंग देख के आता है, वो आटलो मोटो पापड़ तो
आईला, ये आईला बोले समथिंग नया, आईला अटलो मोटो पापड़। ठाकुर जी को नहीं देखा कितने सुंदर श्रृंगार किया था, उनकी चुभ के चुनी कैसी थी, उनके नाक में कैसा हीरा डाला था, कपाल में तिलक कितना सुंदर था, कान में कुंडल कैसे थे, हाथ में वलय कैसा था, सुंदर पुष्प की माला कैसे धारण की थी, मुकुट थोड़ा टेढ़ा हो गया था, पुजारी को भी पता नहीं, मगर अब वहां पहुंच नहीं सकते, ढेर लगा हुआ है इनका, रबड़ी का, बालूसाई का और चटनी का, पापड़ का, इन तमाम के बीच में ठाकुर तो हमने भूल ही गए। पूजाएं तो कर लेते हैं, मंदिरों में चले जाते हैं, किंतु हमारी अवस्था कैसी है, हमारी अवस्था ऐसी है, सूरज के सामने खड़े हो जाओ और कहो हे सूर्य नारायण मुझे तुम्हारा प्रकाश दे दो। दो अवस्था हो सकती है, या तो तुम अंधे हो, नहीं तो ऐसा नहीं बोलोगे, और यहां तुमने आंखें बंद कर ली हैं, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम सूरज के सामने खड़े हो। ईश्वर के सामने हम खड़े हो जाते हैं, किंतु हमारी आकांक्षा क्या है, हमारी इच्छाएं क्या है, हमारी तृष्णा क्या है, विधि क्या है, सूरज के सामने खड़े होकर के इंसान मांग रहा है, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा है, घुटने टेक देता है, किसके लिए, सूरज की रोशनी के लिए। तुमने अपना घर बंद कर लिया है, दरवाजे बंद कर लिए हैं, वेंटिलेशन बंद कर लिए, पर्दे भी डाल लिए, बिजली बंद कर ली, और दो बिस्तर को अपने ऊपर डाल लिया, दोपहर को 12 बजे हैं, उठो भी तो अब सूरज निकले तब तो मैं उठूं। मेरे प्यारे सूरज तो सिर पर आ गए है, तुम अपने आप को ढक करके रखो तो सूरज का क्या दोष है। जो व्यक्ति परमात्मा के सामने भी कुछ मांगता हुआ पहुंचता है, एक बात पक्की है, उसे पता ही नहीं कि वो क्या मांग रहा है। पूजा तो एक रिचुअल होती है, मुझे पता नहीं कि आप लोगों में से कितने लोगों ने श्री रामकृष्ण परमहंस देव के बारे में सुना है। रामकृष्ण परमहंस देव को 14 रुपए मिलते थे केवल, पुजारी रखा गया था, अरे अद्भुत महात्मा थे। आज से 200 साल के पहले कलकत्ता की रानी रासमती ने 11 लाख रुपए में एक मंदिर बनाया दक्षिणेश्वर, जिसमें 12 शिव थे, राधा माधव भी थे और भवतारिणी भी थे। वहां पर रामकृष्ण परमहंस देव के बड़े भाई राम कुमार जी को मुख्य अर्चक, जिनको 32 रुपया और सहायक के रूप में रामकृष्ण को केवल 14 रुपए में पुजारी रखा गया था। कैसे अद्भुत पुजारी थे ये, वो जब गान करते थे इतना अद्भुत गान करते थे, भाव में चले जाते थे। रानी रासमणि देवी कोई असाधारण महिला नहीं थी, उसकी सत्ता बड़ी थी। गंगा में उसने एक बहुत बड़ी जंजीर बांध के रखी थी कि अंग्रेज लोगों की आने जाने वाली स्टीमर्स जो हैं वो नहीं जा सकती जब तक वो रानी को टैक्स ना दे। तो वो रानी है, वो विधवा थी, तो उनके दामाद थे मथुरानाथ विश्वास, वो तमाम कारभार करते थे। उन्होंने रानी से कहा कि ये गदाधर नाम का लड़का आया है, रामकृष्ण तो नाम ही नहीं था, गदाधर था। गदाधर बड़े भाव से भक्ति संगीत करता, पधारिए ना, पधारिए आपने। तो रानी जी आई, रानी तो रानी होती है, बड़ा सिंहासन चांदी का आएगा, छत्र भी आएगा, 10-20 उनके दास दासियां भी रहेंगे, पंखे चलने वाले रहेंगे, बड़ी कारपेट डाली जाएगी और लोग दूर तक बैठेंगे, उसके निकट नहीं आ सकते। गदाधर को बुलाया, वो छोटा लड़का तो था, केवल कोई 19 साल का भी नहीं होगा, 20 साल का शायद, तो उनको बोला गाओ। वो गाने लगा, एक भजन गाते गाते आधे से पूरा कर दिया, उठ करके रानी को 2 थप्पड़ मार दिया। अब पढ़े इस बात को, झापट मार दिया रानी को, लोग हड़बड़ा गए। 11 लाख रुपए का मंदिर बनाने वाली रानी रासमती देवी, उसको 14 रुपए का तनख्वाह मिलने वाला असिस्टेंट पुजारी, जोर से थप्पड़ मार दिया, लोग कभी इसका सिर काट दिया जाएगा। मथुरानाथ विश्वास ने बोला क्या हो गया, बोले यहां ये भजन सुनने के लिए आई है कि वो हिसाब कर रही है, वो कितने स्टीमर कल गए थे और कितने कल जाएंगे उसका हिसाब। रानी ने कहा सचमुच में उसने क्या भजन गाया, मेरे को एक भी पंक्ति पता नहीं, मैं हिसाब ही कर रही थी। तो आप सोचो कि ये भक्ति करने वाला कैसा होगा, ये तो बहुत बादमी की बात है। शुरू शुरू में जब रामकृष्ण परमहंस देव वो गदाधर के रूप में आए थे, 7 ही दिन में इसके नाम की कंप्लेंट्स चालू हो गई कि इसको पूजा करना आता नहीं है। क्यों पूजा करना आता नहीं, बोले क्या पूजा है, ये फूल जो है सूंघता है पहले और बाद में भगवान को चढ़ाता है, और भोग लगाना है तो पहले सब चीज को खा लेता है फिर बाद में भगवान को देता है। अरे उच्छिष्ट पुष्पों को दे रहा है, उच्छिष्ट अन्न को दे रहा है, तो ये क्या कोई पुजारी है? कोई पुजारी ऐसे करता है जो पुष्प नीचे गिर गया उसको भी हम नहीं, ये तो तंत्र है। उसको बुलाया गया, तुमको हम रख ही नहीं सकते हो। रामकृष्ण ने कहा मुझको रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो नहीं रखो, मेरी विधि मेरी ही विधि है। क्यों तेरी विधि क्या? बोले जब मेरी माँ खाना पकाती थी तो खुद सब पहले चख लेती थी कि नमक ठीक है कि नहीं, हींग ठीक है कि नहीं, जीरा ठीक है कि नहीं, मिर्ची ठीक है कि नहीं, चीनी भूल तो नहीं गई हूं, डबल तो नहीं है, तब मुझको खाना देती थी। मेरी माँ भी चक्कर के मुझको देती थी कि उल्टा सीधा खाना वो मेरे बच्चे को ना दे, तो मैं मेरी माँ को उल्टा सीधा खाना कैसे दे सकता हूं? मुझको भी चखना पड़ता है कि खाना उचित है कि अनुचित है, ठीक बना है कि नहीं बना है, जल तो नहीं गया है ना, कोई चीज कमी तो नहीं है, पहले मैं चख लेता हूं तब तो भगवान को देता हूं। और जिस फूल में खुशबू ही ना हो, जिस फूल की रुचि कुछ भी परमात्मा के रंग रूप के साथ ना हो, उस फूल को क्यों मैं चढ़ाऊंगा? इसलिए हर फूल को सूंघ लेता हूं, यह उचित है, भगवती खुश रहेंगी तभी यह फूल दूंगा। बोले तू यहां नहीं रह सकता है, नहीं रखना है तो मत रखो, किंतु मेरी विधि तो यही है। तो तुम्हारी पूजा? बोले पूजा मेरी विधि ही पूजा है। तो बोले कैसे चलेगा ऐसे? मत चलाओ। उनको वहां पर छोड़ दिया गया, दूसरे इंसान को लगाया गया। तो बोले कभी कभी तो आया करो। बोले आ जाऊंगा। एक दिन वो आए, आए भगवान के सामने खड़े रहे, फूल सूख गए, जो भोग लगा था भोग भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, मक्खियां जा रही हैं उसके ऊपर, चींटियां हो गई, और वो खड़े हुए हैं भगवान के सामने रो रहे, इनकी आंखों में अश्रु की धारा चल रही है, वो कांप रहे, उनको पता नहीं कि क्या हो रहा है चारों ओर। शाम हो गई, दोपहर हो गया, रात हो गई, खड़े हुए हैं लोग बाग, खड़े खड़े तंग आकर चले गए, पुजारी है क्या करो, अपने ढंग का पुजारी है, न उसने भोग लगाया है न उसने फूल चढ़ाया है, वो सवेरे से खड़ा है हाथ जोड़ के रो रहा है, केवल अश्रुपात कर रहा है। आधी रात में जब कोई नहीं था तब रामकृष्ण ने देवी को, काफी हो गया तुम्हारे लिए, तुम क्या रोज समझती हो कि मैं तुमको यही कुछ चढ़ाऊं? तुमको क्या चाहिए काली? तुम खप्पर का ये गले के अंदर में मुंड माल पहनती हो, मेरा मुंड भी चाहिए। लो, देवी के हाथ से खड़क था उसको उठा लिया, उठा करके तलवार को जैसे अपने ऊपर मारने गए, उनको पता नहीं क्या हो गया, तलवार कहां गिरी, वो कहां गिरे। 3 दिन तक वो गदाधर अचेत रहा, बेहोश रहे वो रामकृष्ण, 22 साल की उम्र है, बेहोश रहे वो। 3 दिन के बाद जब चेतना आई, बोले क्या हुआ? बोले पूजा पूरी हो गई। क्या? समर्पण हो गया, जो चढ़ाना था वो चढ़ा दिया, जो निवेदित करना था वो कर दिया। अब उन्होंने मंदिर में जाना ही बंद कर दिया। लोग बोले तुम मंदिर में क्यों नहीं जाते हो? बोले काहे जाना है, जब पूजा ही पूरी हो गई तो और क्या कर रही पूजा, एक बार करनी थी सो कर ली, अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो अपने आप ही चढ़ गया हूं और मैं किसको चढ़ाऊं। कितनी बड़ी बात है, पूजा जो है विधि है, जिसमें तात्पर्य क्या है, तादात्म्य क्या है, विषय क्या है, संपूर्ण समर्पण है, औपचारिकता नहीं है, वह आत्मा है। बहुत सुंदर बात है, न केवल ये हमारे रामकृष्ण परमहंस देव की बात है, किंतु हमारे जीवन में क्या बड़ी बात है, ये बड़ी बात, ये इतनी दुख की बात। कृष्ण कहते हैं कि कारण यह है कि तुम किसको पूजा करते हो, सोचो अपने आप को। तुम कहते हो कि हम देव को पूजा करते तो तुम देव को पाओगे, तुम पितरों को पूजा करो तो पितरों को पाओगे, तुम भूत की पूजा करोगे तो भूत को पाओगे, और तुम मुझको चाहते हो तो मुझको पाओगे। तुम्हारी जो तमाम गतिविधि है, ध्यान रखें, एक सड़क पर कोई एक सन्यासी जा रहा है, वो सन्यासी जब जा रहा है तो वहां उसके पीछे भीड़ नहीं लगती है। सचिन तेंदुलकर चला जाएगा तो भीड़ लग जाएगी, अमिताभ बच्चन चले जाएंगे तो भीड़ लग जाएगी। क्यों? सन्यासियों के प्रति अभी लोगों की श्रद्धा नहीं रही है। इन सिनेमा वालों पर, क्रिकेट वालों के, जो बॉलीवुड कल्चर बन रहा है, जो क्रिकेट कल्चर बन रहा है, तो हमारा कल्चर आजकल वल्चर होता जा रहा है। वल्चर कहते हैं वो जो चील ऊपर आसमान में उड़ती है ना, वही वो गिद्ध जो होते हैं, जो पारसी लोगों के मुर्दों को खाते थे, आजकल गिद्ध भी नहीं रहते, मुर्दा खाएगा कौन? तो वल्चर जो हो रहा है, तो उसमें हमारी श्रद्धा कहां है? हमारी श्रद्धा किस पर बनी हुई है? श्रद्धा आत्मा से बनती है, श्रद्धा बाह्य परिकर से नहीं बनती है। जिन देवताओं को हम पूजते हैं, हाँ, जिन भूतों को हम पूजते हैं, जिन तत्वों को हम पूजते हैं, तो वहां हमको सोचना चाहिए कि वहां हमको पूछने वाला कौन है। हम किस परमात्मा को चलने, परमात्मा का अर्थ क्या होता है? जीवन का अंतिम निष्कर्ष है वो अस्तित्व है, अस्तित्व का केंद्र है, अस्तित्व का आखिरी कमल है और वह है परमात्मा है। परमात्मा जो है तो वो एक ऐसा है, इस फ्लाइट इज नो रिटर्न, जहां जाकर के क्या कहा, यद गत्वा न निवर्तन्ते, ऐसी स्थिति की उसके बाद में कुछ मांगने का नहीं रहता है। कोई एक बहुत लंबी छलांग लगाए किंतु ये नहीं सोचना चाहिए छलांग लगा के वो ऊपर रह जाएगा, वो नीचे गिरेगा ही, क्योंकि जो ऊपर रहता है वो नीचे आता है। हवाई जहाज भी जब ऊपर जाता है तो नीचे आता है, स्पुटनिक भी जो आता है नीचे, ध्यान रहे ट्रक तो आकाश में उड़ सकता नहीं है, हवाई जहाज तो उड़ जाते हैं, किंतु जो ऊपर जाने वाले हो तमाम नीचे आते हैं। किंतु एक बार ऐसे हो जाए कि उसके रूप हो जाए, उसके मय हो जाए, उसके तद्रूप हो जाए, तो कैसे हो सकता है? केवल एक पुनर्जन्म है वो हमारी भारतीय परंपरा में, पुनर्जन्म। हम क्या सोचे परमात्मा को अंतिम निष्कर्ष सोचे, केवल परमात्मा के अतिरिक्त हमारे मन में कोई चिंतन ना हो, और अंत में एक बात कहेंगे हमारे जीवन को पुनरुक्ति ना बनने दें। एक बात जो एक काम हमने किया है अगर वो गलत है हम समझते हैं तो उसको फिर से ना करने दें। जन्म के बाद में मृत्यु आती है, जन्म के बाद में बीमारी आती है, जन्म के बाद में बुढ़ापा आता है, तो यह आता है। बालावस्था खेल गवाई हम कहते हैं, युवानी में तनधारा को लेते हैं हमने, किंतु तमाम के पीछे, उन तमाम के आगे एक एक सूची है कि जिसकी दौड़ हम की ऐसी जगह में पहुंच जाए जिसके बाद में क्या बोलते हैं, यम लब्ध्वा चापरम लाभम, एक ऐसी प्राप्ति हो जाए उसके बाद में कुछ प्राप्त करने का ना रह जाए। एकम ज्ञाता सर्वम विजानीयात, जिसके ज्ञान के बाद में हमें और कुछ ज्ञान रहने का ना रह जाए, उसकी क्या अभी हमने चेष्टा की? हम इतनी कथाओं को सुन रहे हैं, इतने संत आ रहे हैं, एक महीने में दो संत तो कम से कम आते हैं, 12 महीने में 24 संत कम से कम, बाकी स्वाध्याय कराने वाले अलग, शाम के अलग, सुबह से शाम तक यहां प्रेमपुरी में बैठे रहो तो प्रेम बरसता ही रहेगा परमात्मा की कथा का, किंतु इन तमाम प्रेम को अपने भीतर टटोलो, भीतर कितना संजोया हमने। हमारे उत्तर प्रदेश में कहते हैं पल्ला झाड़ सत्संग कहते हैं, पल्ला झाड़ मैंने उठने के समय में ऐसा करके लोग खड़े होते तो वहीं का वहीं छोड़ देते। एक दिन मुरारी बाबू कह रहे थे कि स्वामी जी क्यों कहवानू एम के आपने छे ने कथा पूरी थी ने आपने जता हुई ने बहनों बधा वात करे, कथा क्या आवी, ये तो बापू आगे चलावा ने ए याद करसे आपने शू एम के बताइए, ये कथा कहां तक पहुंची, कथा क्या आई, तो वो बापू करेंगे हमें क्या, तो ये लोग क्या है सब टाइम पास है क्या? अपने आप को टटोलो, एक क्षण भी, एक घड़ी आधी से पुनी आध। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भाई संगत साधु की खटे खोटी अपराध, जीवन के प्रति क्षण हम जो सुनते हैं उसको मन में, उसको भीतर ही भीतर उसको क्या बोलते हैं, मंथन करते चले जाएं। वे डू आई स्टैंड, रात में सोने के समय में पूछो अपने आप को, परमात्मा को, प्रभु आओ थोड़ा बैठो मेरे साथ में, कुछ आपसे गपशप करेंगे, प्रभु से कुछ बात करो। सवेरे उठने के साथ में स्टार्ट योर डे विथ गॉड, एंड योर डे विथ गॉड, लीव योर डे विथ गॉड एंड फिल योर डे विथ, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, यह संभव नहीं है ना, चेष्टा तो करें। एक बहुत सुंदर बात है, किसी एक आदमी ने आकर के बुद्ध के मुंह पर थूक दिया, तो बुद्ध ने अपना चादर है उसको लूच पूछ करके कहा धन्यवाद, और कुछ कहना चाहते हो? तो बोलता है क्या कहना है मुझको, जो कहना था मैंने कर दिया, यही तो तुम इतने दूर से आए, रास्ते में आ गए, आकर के तुमने जितना गुस्सा था कि बोल नहीं पाए तो इस गुस्से को करतूत से बता दिया, क्या बात है, आप कुछ कहना चाहते हो क्या? तो चला गया वो कर करके, उसको रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन फिर आ गया, क्योंकि बुद्ध रोज वहां से जाते हैं, फिर आ गया, वो बोलता है बुद्ध मेरे को क्षमा कर दो। नहीं, किस बात के लिए क्षमा करना है? अरे कल मैंने, अरे कल दूसरा बुद्ध था, आज दूसरा बुद्ध है, गंगा के तट पर खड़े रहो, ये पानी गया, बोले कल वाला पानी नहीं, कल वाला पानी तो कहां निकल गया, वो कल वाला बुद्ध भी चला गया, आज भी नया बुद्ध हूं, बोलो कुछ कहना चाहते हो क्या? नहीं नहीं कल मैंने, कल तो कुछ नहीं, मेरे को ध्यान भी नहीं है। लोग बात कहते हैं बुद्ध तुम कैसे हो, रोज आकर गिड़गिड़ाता रहा, रोज पछतावा करता रहा। हम क्या करते हैं, हम गलतियां करते हैं और गलती करने के बाद में भूल माफ करो फिर नई गलती कर देते हैं, एक नई श्रृंखला बना देते हैं, उस श्रृंखला को काटना पड़ेगा, उस श्रृंखला को काटना पड़ता है। कैसे कि भूल किया पछतावा किया, भूल किया पश्चाताप किया, ये अंग्रेज लोग करते ही है। चर्च में जाने वाले लोग जो है ना, वहां कन्फेसिंग बॉक्स होता है, बाहर खड़े होकर के बोल देते हैं, अंदर बैठ के बोल देते हैं, फादर मैंने आज ये किया ये किया ये किया ये किया, फादर बोलते हैं अच्छा ईश्वर ने तुमको माफ किया जा। फिर दूसरे दिन फिर वो आके बोल देता है, एवरी डे रोज सुबह आके बोलता है कल रात मैंने इतना गुनाह किया है, तुम रात में गुनाह को करो, सवेरे जाकर के बोल दो मुझे माफ कर दो। एक दिन तुमको माफ नहीं किया जाए तब तुम जागृत हो जाओगे। एक कड़ी को काटना पड़ेगा, कड़ी को तोड़ना पड़ेगा अपने जीवन को टटोल करके कि हम क्या कर रहे हैं। रोज सुबह आकर रात में गलती करते हैं, त्रुटियां करते हैं, सुबह हम पश्चाताप करते हैं, हमारी श्रद्धाएं उस घर उसको माफ नहीं किया जाए तो वो कभी नहीं, जब माफ कर दो तो फिर वो फिर से आकर के इसके मुंह पर थूकेगा, किंतु माफ किया ही ना जाए उसको, तो माफ नहीं करना उसका मतलब क्या हुआ, क्या हम क्रूर हैं? नहीं, उसके प्रति हमको प्रेम है, फिर से वो गुनाह ना करे। क्योंकि जो एक समय जो इंसान आता है वो नास्तिक होता है, किंतु धीरे धीरे जब अपने आप को टटोलता है तो नास्तिक का न निकल जाएगा तो फिर वो आस्तिक हो जाएगा, वो नम्र हो जाएगा, सरल हो जाएगा। कि जो सुबह आदमी होता है वो अलग होता है, दोपहर को आने वाला अलग होता है, शाम को आने वाला होता है, क्योंकि वो प्रभु की कृपा को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा कहते तुम किसकी सेवा करते हो, सर्वयज्ञ का भोक्ता तो मैं हूं, प्रभु भी मैं हूं, तुम नहीं जानते हो, ये तुम्हारा दोष है। देव को व्रत करने वाले, पितृ को व्रत करने वाले, भूतों को व्रत करने वाले, तुम सब मेरी ही सेवा कर रहे हो, किंतु थोड़ा समझो, थोड़ा जानो, एक बात को याद रखो, पुनरुक्ति ना किया करो। अगर हम जानते हैं कि हमारा काम है वो केवल परमात्मा से ही है, नारायण से ही है, लक्ष्मी के पीछे नहीं दौड़ना। उस मुख्यमंत्री से हम जब बात करेंगे तो तमाम मंत्री आपकी देखभाल करने के लिए अपने आप आ जाएंगे। नियम तो ऐसा है कि रात 10 बजे के बाद में पब्लिक में माइक नहीं बजाना चाहिए, बजाए तो पुलिस आ जाती है, कोई 100 को फोन कर दे तो आपकी कंप्लेन हो जाएगी, तो कंप्लेन तो दर्ज FRI हो जाएगा, आपको ले जाएंगे जेल में, गाने वाले को भी लेके जाएंगे, माइक को भी लेकर के चले जाएंगे। किंतु आप गवर्नर को बुला लो, गवर्नर आकर के बैठ जाए, और गवर्नर आकर के 2 घंटा बैठ जाए, फिर पुलिस भी वहां खड़ी हो जाएगी, कौन कंप्लेन किसके लिए करेगा। अब पकड़ना उसको कि जिसको पकड़ने के बाद में वो कोई पकड़ने के लिए ना रहे। एक आदमी के जिंदगी का लक्ष्य यदि रुपया इकट्ठा करना है तो उसके पास आत्मा नहीं होगी, उसको यश ही चाहिए तो उसको आत्मा नहीं होगी, उसको पद ही चाहिए तो आत्मा नहीं होगी। अगर वो आत्मा को प्राप्त कर लेगा, रुपया तो आता चला जाएगा, पद भी मिल जाएगा, और उसको यश कीर्ति भी। आत्मा को चाहो जो कि स्वयं परमात्मा का स्वरूप है, अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य बनाए, अंत तो वही हो, श्रद्धा, अनन्य श्रद्धा, अखूट श्रद्धा, संपूर्ण शरणागति किसमें, तन मन वारू गुरु चरणन पर, एक भाव धरी मंगल गाऊ, जब पाऊं दरस बलि बलि हो जाऊं, गुरु ना माने तो रिझाओ गुरु को, गुरु नहीं माने तो गुण नहीं आवे, गुणियन में बेगुनी कहावे, गुरु ही के चरण में ही, गुरु की आज्ञा में ही, गुरु की शरणागति में ही परमात्मा की प्राप्ति है, उसको ना भूले। इसने जिसको पाया है वही यान्ति मध्याजनोपि माम, यही मेरी प्राप्ति करते हैं। ओम शांति शांति शांति। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके समय दान के लिए धन्यवाद, आपके भीतर विराजित परमात्मा को प्रणाम, नमो नारायण। आज कुछ मिनट अधिक हो गए हैं, इसके लिए क्षमा। ओम शांति।